समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। नमस्कार वैभव।
अ न्यू डे, अ न्यू होप। नमस्कार, खैर मकदम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मनोज एंड टू ऑल आवर डियर लिसनर्स tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashvani network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, some metro city updates, as well as some historical trivia related to this day, that is the 22nd of December. But first, we begin with the headlines. President Draupadi Murmu has granted assent to the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Shanti Bill passed by Parliament during the winter session. The bill subsumes all laws dealing with the civil nuclear sector and also opens it up for participation by private players. The Shanti Bill repealed the Atomic Energy Act of 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, which had proved to be an impediment in the growth of the civil nuclear sector in India. The law enables private companies and joint ventures to build, own, operate and decommission nuclear power plants under a license from the government. President Draupadi Murmu has also given assent to the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat GRAMG Bill 2025. The Parliament had passed the legislation during the recently concluded winter session. More from our correspondent.
The Act seeks to establish a rural development framework aligned with the national vision of Viksit Bharat 2047. A statutory guarantee of 125 days of wage employment will be provided in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work. This is a significant push up from the 100 days period under the previous scheme. The fund-sharing pattern between the central and state governments will be 60-40 for all states, except the northeastern and Himalayan states, where the sharing arrangement will be 90-10. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has termed the act as the next step forward for MNREGA, which is in favour of development and the poor. In a video message today, the minister informed that more than 1,51,000 crore rupees have been proposed for it.
Now there is a guarantee of 125 days of work and the provision of unemployment allowance has been further strengthened if work is not provided. If wages are paid late, there is a provision to give additional compensation. There is also a special provision under which administrative expenses have been increased from 6% to 9%. This amount will ensure that our colleagues involved in implementing the work, such as panchayat secretaries, employment assistant and technical staff, receive their salaries on time so that they can carry out the work properly.
The Act replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA 2005, Adarsh for Akashvani News, Delhi.
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 207 पदों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमट गया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा ने नगर अध्यक्षों की 117, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 28, एनसीपी शरद पवार को 7 और शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव आयोग में अन्य पंजीकृत पार्टियों ने 4 सीटें जीती, जबकि नगर अध्यक्षों की 28 सीटें गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों को मिली हैं। 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 2 चरणों में हुए, जबकि 2 अन्य स्थानीय निकायों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और महायुति की जीत पर राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है।
The ruling BJP has registered a landslide victory in the local body elections in Arunachal Pradesh, securing a majority of seats in the Zilla Parishads and Gram Panchayats polls, for which were held on December the 15th. The BJP also scored a decisive win in the Itanagar Municipal Corporation IMC elections by winning 14 out of the 20 wards. However, the Regional People's Party of Arunachal, PPA, emerged victorious in the Pasighat Municipal Council, PMC, bagging 5 out of 8 wards, while the BJP won 2 and an independent secured 1 seat. The opposition Congress failed to win a single seat in both the IMC and PMC elections. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Arunachal Pradesh for the victory and the support for politics of good governance in panchayat elections. In a social media post, Mr. Modi said that this win strengthens the resolve to keep working for the state's transformation. The Prime Minister appreciated the BJP karyakartas for working tirelessly among the people.
सरकार ने आश्वासन दिया है कि अरावली की पारिस्थितिकी को तत्काल कोई खतरा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली किसी भी भू आकृति को संरक्षित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 500 मीटर की दूरी के भीतर की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में समूहीकृत किया गया है, इसलिए बीच की घाटियां, ढलाने और छोटी पहाड़ियां भी संरक्षित हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये निष्कर्ष निकालना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी भू आकृतियों में खनन की अनुमति है।
The 28th edition of Divya Kala Mela concluded with a colourful closing ceremony at the Kartavyapath in New Delhi yesterday. The 9-day fair showcased creativity, resilience and entrepreneurial spirit of Divyangjan from across the country. The Divya Kala Mela, organised by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment, witnessed over 100 Divyang artisans and entrepreneurs from 20 states. The closing ceremony featured cultural performances by Divyang artists, highlighting music, dance and folk traditions and drawing appreciation from the visitors. The Mela provided a platform for persons with disabilities to display and sell handicrafts, home decor, textiles and other creative products, promoting self-reliance, Atmanirbharta and inclusive growth. Talking to Akashvani News, Shalini, who participated in the Divya Kala Mela, along with her daughter Devanshi, expressed her gratitude to the National Divyangjan Finance and Development Corporation for the support. She said the assistance enabled her to set up a stall at the Mela, where she showcased and sold handmade and handcrafted wall art.
मेरा नाम शालिनी है और ये आप जहाँ खड़े हुए देवांशी का स्टॉल है, स्टॉल नंबर 19। सो हमें यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली है देवांशी का आर्टवर्क डिस्प्ले करने की, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि देवांशी हैपेंस टू बी विद लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड, ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म है उसको और स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो देवांशी को ADHD इश्यूज होते थे जब वो थोड़ी छोटी थी, तो उसके लिए हमने काफी मेडिकेशंस और उसके एनर्जी चैनलाइज करने के लिए बहुत एरियाज एक्सप्लोर किए, बट ये आर्टवर्क जो आप देख पा रहे हैं ये देवांशी ने खुद चूज किया अपने लिए, टू फोकस हर एनर्जीज, टू फोकस हर माइंड्स एंड ऑल दिस।
महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापत्तनम में खेले गए 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस T20 श्रृंखला का अगला मैच कल विशाखापत्तनम में और आखिरी 3 मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली सरकार ने वर्तमान बजट में परिवहन विभाग के लिए 9,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये बजट लगभग 60% अधिक है। इस क्रम में राजधानी और NCR में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण है।
Moving on to the news from Chennai, the 137-year-old Victoria Hall in Chennai is set to reopen early this week after extensive restoration. The Indo-Sarsenic structure has been restored to its former glory and will be maintained by a professional agency. The hall is expected to host cultural programs, including musical performances and public speeches. The forecourt now features replicas of vintage transport modes such as cycle rickshaws, trams and boats, highlighting Chennai's transport heritage and offering new attractions for visitors. As the northeast monsoon begins to withdraw, air quality in Chennai continues to remain a concern. The city's overall air quality index is hovering around 178, placing it in the moderate category. Health experts warn that people with asthma, lung or heart conditions may experience breathing discomfort at these levels. Several localities, particularly northern parts of the city, are recording unhealthy pollution levels due to vehicular emissions, construction activity and road dust. Air quality researchers say that while the citywide average appears moderate, ground-level exposure in certain areas remains high enough to affect sensitive groups. Doctors have advised residents with respiratory problems to avoid prolonged outdoor activity. Children and senior citizens are also urged to exercise caution.
अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। पश्चिमी रेलवे जून 2026 तक जोगेश्वरी में मुंबई के चौथे रेलवे टर्मिनल को चालू करने के लिए तैयार है। अधिकारियों के अनुसार पूरी सुविधा मार्च 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। रेलवे ने कहा कि नए टर्मिनल से दादर, मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस जैसे भीड़ भाड़ वाले लंबी दूरी के स्टेशनों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि ये टर्मिनल जोगेश्वरी में मौजूदा सहायक टर्मिनल यार्ड में विकसित किया जा रहा है, जिसका उपयोग वर्तमान में केवल ट्रेनों को खड़ा करने के लिए किया जाता है और ये यात्री सेवाओं का संचालन नहीं करता है। एक बार चालू होने के बाद ये सुविधा मुंबई के लंबी दूरी के रेल नेटवर्क में एकीकृत हो जाएगी और परियोजना के दोनों चरणों के पूरा होने के बाद प्रतिदिन 24 ट्रेनों तक का संचालन करने में सक्षम होगी। मुंबई की एक और खबर। मुंबई के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 25 दिसंबर से वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल फर्स्ट यात्री संचार प्रणाली, वाईफाई सक्षम ऐप और वर्चुअल असिस्टेंट से लैस ये हवाई अड्डा अत्याधुनिक सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये हवाई अड्डा शुरू में सीमित संख्या में उड़ानों का संचालन करेगा और बाद में चरणबद्ध तरीके से खुलेगा। पहले चरण में 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी और इसे 19,650 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से बनाया गया है। समय के साथ इसकी क्षमता को बढ़ाकर 9 करोड़ यात्रियों तक करने की योजना पर काम चल रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे पर दबाव कम करेगा और क्षेत्र के हवाई यातायात में दीर्घकालिक वृद्धि को बढ़ावा देगा।
Now some news from Bengaluru Metro. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has urged sportspersons to excel at global level and called upon the government to extend its support in this task. He was speaking at the Olympic Association Awards presentation ceremony in Lok Bhavan in Bengaluru yesterday. He appreciated the role played by the government in strengthening sports infrastructure to ensure overall development in the area of sports. He said focus should be to hunt sporting talents in both rural and urban areas and provide them essential support and opportunities to improve their performance. He noted that the sportspersons winning laurels for the country and the home state are provided reservation in government jobs and honoured with due recognition. He laid emphasis on encouraging sports activities and making physical education compulsory in schools and colleges.
अब चलते हैं कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि देश के विकास के लिए समाज का संगठित होना आवश्यक है। उन्होंने रविवार को RSS की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता के साइंस सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज के आम सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, इसलिए ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों का संगठन बनाना विशेष रूप से आवश्यक है। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ का गठन किसी के विरोध या प्रतिक्रिया से नहीं हुआ है। संघ प्रतिबद्धताओं की पूर्ति पर केंद्रित है, ये किसी व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ के लिए काम नहीं करता है।
And now we move on to Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a cold wave alert for 11 districts in Telangana for today. Met officials informed that cold wave conditions are very likely to prevail at isolated pockets in Adilabad, Kumaram Bhim, Asifabad, Mancherial, Nirmal, Warangal, Hanamkonda, Jangaon, Siddipet, Sangareddy, Medak and Kamareddy districts today. They further informed that fog or misty conditions are very likely to prevail during morning hours and hazy conditions are very likely to prevail during night hours. The minimum temperatures are likely to be below normal by 2 to 3 degrees Celsius during the next 2 days.
अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं वैभव से।
Chennai is expected to have fog, mist in the morning and partly cloudy skies. Later, the minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist in the early morning. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and the maximum could be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have fog or mist in the early morning. The temperature will hover between a minimum of 12 and a maximum of 29 degrees Celsius. And now moving on to something special, something that we all know and we care for. It's the National Mathematics Day, Manoj, will be observed today to commemorate the birth anniversary of the mathematical genius Srinivasa Ramanujan, one of India's most influential and globally recognized mathematicians.
Srinivasa Ramanujan ne ganit ke kshetr mein ahem yogdan diya hai. Yahi karan hai ki unke janm divas ko Bharat sarkar ne rashtriya ganit divas manane ki ghoshna ki thi.
The day will be marked across educational institutions, research bodies and academic forums to highlight the importance of mathematics and scientific progress in everyday life. The observance was formally instituted by the Government of India in December 2011 and December 22. It was designated as the National Mathematics Day in recognition of Ramanujan's extraordinary contributions to the discipline.
राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि गणित केवल अंकों का खेल नहीं बल्कि मानव जीवन और वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला है। शिक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में गणित की भूमिका बेहद अहम है। ये दिन विद्यार्थियों में तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
The celebration of National Mathematics Day not only honors Sri Ramanujan, but also acknowledges India's rich history in mathematics. Ancient India contributed significantly to mathematics, including the development of the decimal system, the concept of zero, and contributions to algebra and trigonometry. December 22nd marks the birth of Srinivasa Ramanujan, whose work continues to influence modern mathematics more than a century later.
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 22 दिसंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1851 में आज ही के दिन देश में पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई। 1910 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी हुआ।
In 1882, the first Christmas tree was decorated with bulbs made by Thomas Edison. In 1885, on the 22nd of December, Eto Hirobumi became the first Prime Minister of Japan. In 1891, 323 Brucei became the first meteoroid to be discovered by photography by German astronomer Max Wolf. In 1947, the Parliament of Italy adopted a new constitution. In 1966, Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi was established by the Parliament of India under the JNU Act. In 1901, Gurudev Rabindranath Tagore established the School of Brahmacharyasma for children or at Santiniketan, West Bengal. It is around this school that the structure of the unconventional and globally renowned Viswabharati University has developed.
1978 में आज ही के दिन थाईलैंड ने संविधान अंगीकार किया। 2007 में आज ही के दिन फ्रेंच गुआना के गॉस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए यूरोप के एरियन रॉकेट ने अंतरिक्ष कक्षा में दो उपग्रह स्थापित किए। 1990 में आज ही के दिन क्रोएशिया ने संविधान को अंगीकार किया और अपने नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान किए। और अब वैभव याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
Starting with a legend, we've already talked about the great mathematical genius of Srinivasa Ramanujan. Talking about a great in the industry of music, we are talking about and remembering Robin Hugh Gibb CBE, whose birth anniversary is today. He was born in 1949. He was a singer and songwriter. He gained global fame as a member of the band Bee Gees with his elder brother Barry and twin brother Maurice. Robin Gibb was also someone who had his own successful solo career.
I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I want to feel you.
In 2002, the Bee Gees were appointed as CBEs for their contribution to music.
आज पुण्यतिथि है वसंत देसाई की। उनका जन्म 9 जून 1912 को गोवा में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम वसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। ये गीत आज भी श्रोताओं द्वारा पूरे मन से सुना जाता है। इस गीत को पंजाब सरकार ने सभी विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में शामिल कर लिया था। वर्ष 1943 में वी शांताराम अपनी फिल्म शकुंतला के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। वी शांताराम ने फिल्म के संगीत के लिए वसंत देसाई को चुना। इस फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी मुख्य फिल्में दो आंखें बारह हाथ, तीन बत्ती चार रास्ता, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, सैरंध्री, तूफान और दिया आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत। आज जयंती है मौलाना मजहरुल हक की। उनका जन्म 22 दिसंबर 1866 बाहपुरा गांव पटना में हुआ था। वे देश के समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर शिक्षाविद, बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। मजहरुल हक ने 1917 के महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
It's the birthday of the actor who is known to do no good. He's known to do excellently in whatever he does. And he played the character who was called He Who Must Not Be Named from the Harry Potter series. Yes, it's the birthday of Ralph Fiennes, an English actor and director, recognized for his work on stage and screen. He has received numerous accolades, including a BAFTA Award and a Tony Award, as well as nominations for 3 Academy Awards, 7 Golden Globe Awards, and a Primetime Emmy Award. Born in Ipswich, Suffolk, Fiennes was trained at and graduated from the Royal Academy of Dramatic Arts in 1985.
आज जयंती है गुरु गोविंद सिंह की. उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था. वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं. वे 11 नवंबर 1675 को सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और 1708 ईस्वी तक इस पद पर रहे. वे सिखों के सैनिक संगति खालसा के सृजन के लिए प्रसिद्ध थे.
सच्चे तख गुरचारा सच संगत मेला हर सच्चे तख गुरचारा सच संगत मेला हर सच्चे तख गुरचारा सच संगत मेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला.
It's the birthday of a very, very famous and a viral-going musician, Megan Elizabeth Trainor, known for her prominence with the Epic Records in 2014 and releasing her debut single, All About That Bass, which reached number one in the Billboard Hot 100 chart and sold 11 million copies. She has won various accolades. Here's her track called Made You Look.
I could have my Gucci on. I wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look.
I made you look.
Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look.
I made you look.
मोर नाचते हैं शीशम के जंगल में. डालों के झुरमुट में घूमता है बूढ़ा चौकीदार. पूरन मासी का चांद परती के बीच एक घर है जहां बच्चे सोए हैं, जहां माँ सोई है. लटक आते हैं छप्पर से गेहूं करैत, जहां आंगन में रात भर चमकती है एक कुदाल. ये रचना है पंकज सिंह की. आज जयंती है साहित्यकार पंकज सिंह की. उनका जन्म 22 दिसंबर 1948 को बिहार में हुआ था. समकालीन हिंदी कविता के वे महत्वपूर्ण कवि थे. हिंदी कविता के क्षेत्र में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण कवियों में से वे गिने जाते हैं.
Also wishing a birthday to Jonathan Lindale Kirk, known professionally as Da Baby, or well, he's an American rapper. After releasing several mixtapes between 2014 and 18, he signed with Interscope Records in January 19. And then, of course, came the single Suge, which peaked within the top 10 of Billboard Hot 100 a month after its release. He's given numerous hits with Post Malone called Enemies, Cash by Megan Thee Stallion. His third album, Blame It On The Baby, became second peak to chart the tops and spawned the single Rockstar featuring Roddy Ricch. Here's a track featuring Dua Lipa called Levitating.
Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up.
आज जन्मदिन है भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक वेणु नायर का. उनका जन्म 22 दिसंबर 1964 को जिला अलापुझा केरल में हुआ है. वे 1990 से टेलीविजन और फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं और वृत्तचित्र फिल्मों, मिनी सीरीज और फीचर फिल्मों सहित 100 से अधिक प्रस्तुतियों का निर्माण कर चुके हैं. उनकी फिल्मों ने विश्व स्तर पर लगभग 60 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं. उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी पहली फीचर फिल्म डेथ बाय वाटर अर्थात जल समाधि का निर्माण और निर्देशन किया. ये फिल्म समकालीन समाज में व्याप्त एक विघ्नकारी मुद्दे अवांछित बुजुर्गों के साथ व्यवहार से संबंधित है। जल समाधि को विश्व भर के 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए चुना गया था। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की।
Stay tuned for coming up next, समाचार प्रभात, फॉलोइंग बाय द मॉर्निंग न्यूज। नमस्कार।